यूनाइटेड नेशंस रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 19 मार्च 2021 के बुलेटिन की हेडलाइंस। कोविड 19 की वैक्सीनों के प्रभावों पर शंकाएं बताई गईं निराधार, एक और वैक्सीन को मिली मंजूरी। महामारी से निपटने के प्रयासों में महिलाओं की है चौतरफा भूमिका। महिलाओं के सशक्तिकरण से परिभाषित होता है लोकतंत्र। दक्षिण एशिया में कोविड 19 संबंधी उपायों के परिणाम स्वरूप जच्चा बच्चा की जिंदगी पर मंडराया है मौत का अतिरिक्त खतरा। और उम्र पर आधारित पूर्वाग्रहों व भेदभाव से न केवल बिखरता है सामाजिक ताना बाना बल्कि होता है अरबों डॉलर का नुकसान भी। हम आपको याद दिला दें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके जरिए समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दिए जाने के बाद कुछ लोगों में रक्त के थक्के जमने की शिकायतों से उपजी चिंताओं के बीच देशों से इस वैक्सीन का इस्तेमाल जारी रखने की सिफारिश की है। वैक्सीन सुरक्षा पर संगठन की एक वैश्विक सलाहकार समिति ने दोहराया है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से होने वाले फायदे उसके जोखिमों से कहीं ज़्यादा हैं। इस बीच WHO के स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स यानी सेज सलाहकार बोर्ड ने एक खुराक वाली जेनसन वैक्सीन को सुरक्षित व जीवन रक्षक करार दिया है। ये वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन ने तैयार की है। UN एजेंसी अभी तक कोविड 19 की रोकथाम के लिए 3 अन्य वैक्सीनों को इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान कर चुकी है जिनके नाम है फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका। एक रिपोर्ट के साथ सचिन गौड़।
यूरोप में ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 करोड़ और भारत में 2.5 करोड़ से ज्यादा खुराकों को दिया जा चुका है। वैक्सीन पाने वाले कुछ लोगों में रक्त के थक्कों के जमने की चिंताओं के कारण अनेक यूरोपीय देशों ने वैज्ञानिक समीक्षा होने तक वैक्सीन के इस्तेमाल को स्थगित कर दिया था। वैक्सीन सुरक्षा के मुद्दे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक सलाहकार सहसमिति की इस सप्ताह बैठक हुई। इस बैठक में वैक्सीन पाने वाले लोगों में रक्त के थक्के जमने और प्लेटलेट संख्या गिरने के मामलों पर जुटाए गए आंकड़ों की समीक्षा की गई। शुक्रवार को बैठक के बारे में जानकारी देते हुए UN स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने बताया,
The committee has concluded that the available data do not suggest any overall increase in clotting conditions following administration of the Oxford AstraZeneca vaccine.
समिति का निष्कर्ष है कि अभी तक उपलब्ध आंकड़े ये नहीं दिखाते कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड 19 वैक्सीन को दिए जाने के बाद रक्त के थक्के जमने की अवस्थाओं में बढ़ोतरी हुई हो। इसके परिणाम स्वरूप समिति की सिफारिश है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से होने वाले फायदे उसके जोखिमों से कहीं ज्यादा हैं। महानिदेशक गेब्रेयेसस के शब्द। कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 12,14,00,000 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 26,84,000 लोगों की मौत हुई है। UN एजेंसी के मुताबिक किसी भी औषधि या वैक्सीन के साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीका लगवाने का जोखिम उस रोग के जोखिम से ज्यादा या कम है जिसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन लगाई जा रही हो। महानिदेशक गेब्रेयेसस ने कहा कि इस मामले में कोविड 19 एक घातक बीमारी है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इसकी रोकथाम कर सकती है। ये याद रखना भी अहम है कि कोविड 19 संक्रमण के कारण भी रक्त के थक्के जम सकते हैं और प्लेटलेट संख्या में कमी आ सकती है। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने देशों से इस महत्वपूर्ण कोविड 19 वैक्सीन का इस्तेमाल जारी रखने का आग्रह किया है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इस नज़रिए से भी अहम है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स पहल के तहत 90% इन्हीं वैक्सीनों का वितरण किया जा रहा है। इस वर्ष जनवरी और फरवरी महीनों में 6 हफ्तों तक संक्रमणों में आई गिरावट के बाद कोविड 19 के मामलों का बढ़ना लगातार 4th हफ्ते भी जारी रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वायरस के नए प्रकारों, समाजों में जनजीवन की शुरुआत और वैक्सीनों का असंगत वितरण, इन सब का असर दिखाई देना एक चिंताजनक रुझान है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कोविड 19 के प्रभावों से पुनर्बहाली प्रयासों के केंद्र में आगे पीछे यानी हर तरफ महिलाओं को रखना होगा, यानी अर्थशास्त्र दक्षता, कारगरता और सामाजिक सुदृढ़ता का एक विषय बनाना होगा। महासचिव गुटेरेश ने मंगलवार को महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 65वें सत्र के दौरान एक वर्चुअल टाउन हॉल बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पुरुषों के दबदबे वाली टीमें पुरुषों के दबदबे वाले समाधान साथ लाएंगी, इसलिए पुरुषों द्वारा बनाई गई उन नीतियों की ओर नहीं लौटा जा सकता है जिनके परिणाम स्वरूप हम अपने चारों ओर भंगुरता देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने भी महिलाओं की स्थिति पर आयोग को संबोधित करते हुए कहा है कि महिलाओं व लड़कियों को सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के लिए पूर्ण रूप से सशक्त बनाना सही और बुद्धिमत्तापूर्ण चयन है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी महिला आयोग के सत्र को संबोधित किया जिसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। कमला हैरिस ने यूएन महिला आयोग को अपने वीडियो संबोधन में सचेत किया कि महिलाओं के दर्जे में ही लोकतंत्र का दर्जा झलकता है।
The status of democracy also depends fundamentally on the empowerment of women, not only because the exclusion of women in decision making is a marker of a flawed democracy, but because the participation of women strengthens democracy.
कमला हैरिस कह रही थी कि लोकतंत्र का दर्जा बुनियादी रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी निर्भर है। महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा जाना न केवल एक त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की निशानी है बल्कि महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है, और ये बात सभी जगह सच है। मुझे ये कहने में भी गर्व है कि अमेरिका को अभी काफी काम करना है, मगर हम प्रगति हासिल कर रहे हैं, और ये भी कि महिलाएं हर दिन हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के शब्द। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मानवाधिकारों की रक्षा करता है, कानून के राज को सर्वोपरि बनाता है और साझा शांति व समृद्धि पाने का एक माध्यम व साधन है जिसमें हर किसी की समान आवाज हो। भारत की राजधानी दिल्ली में विधानसभा की सदस्य आतिशी का करियर शिक्षण से शुरू हुआ था जिसने आगे जाकर ऐसा राजनीतिक मोड़ लिया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की काया पलट हो गई। आतिशी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की राजनीति में प्रतिनिधित्व व महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर यूएन न्यूज हिंदी की अंशु शर्मा के साथ खास बातचीत की।
आप राजनीति में कैसे आई और इस मुकाम तक कैसे पहुंची, अपनी कहानी बताइए।
पढ़ाई लिखाई के बाद एजुकेशन की फील्ड में काम करना शुरू किया, एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया भी, कई सारी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक्स वगैरह के साथ काम भी किया। कई सालों तक रूरल मध्य प्रदेश में मैं रही भी, वहाँ पे काम किया, एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम्स, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कैसे इफेक्टिव हो सकती हैं। लेकिन इतने सालों के काम करने के बाद भी लगता था कि सारे एफर्ट के बावजूद भी कोई बहुत बड़े स्केल पे चेंज नहीं आ रहा है। उसी समय की बात है जब 2011-12 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, तो उसके साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना आंदोलन के साथ वॉलंटियर करना शुरू किया, उनके लिए कुछ पॉलिसी का रिसर्च करना शुरू किया। तब मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ बस एक प्योर वॉलंटियर के तौर पे जुड़ी थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आम आदमी पार्टी बन गई, तो आम आदमी पार्टी के साथ एक वॉलंटियर के तौर पर जुड़ी थी। अगर आप पूछिए ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि, एक तो ये नहीं सोचा था कि ये कोई लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, ये लगता था कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ समय इनका साथ देना चाहिए, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था इलेक्शन लड़ने के बारे में, एमएलए बनने के बारे में।
इस दौरान कई चुनौतियों का भी जाहिर आपने सामना किया होगा, क्या लगता है महिलाओं के लिए राजनीति में आना और फिर उच्च पद तक पहुंचने के रास्ते पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कठिन है?
देखिए, महिलाओं के लिए अगर आप देखिए तो कोई भी काम पुरुषों से ज्यादा कठिन है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, ये इस समाज में इनइक्वालिटी या गैर बराबरी तो एक गिवन है, एंड कोई भी अगर कहेगा कि इस समाज में इनइक्वालिटी नहीं है तो वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स। एक मेनस्ट्रीम करियर में भी जहां महिलाओं के लिए इतने चैलेंजेस हैं, अगर आप पॉलिटिक्स देखिए तो पॉलिटिक्स उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन है, जो पब्लिक डोमेन में है, जो 100% 24/7 का काम है, जहाँ पे आप हमेशा पब्लिक आई में रहते हैं। सो डेफिनेटली इट इज मोर चैलेंजिंग फॉर वुमेन टू बी एबल टू मेक दिस चॉइस।
तो जब से सोशल मीडिया का उदय हुआ है, उससे क्या लगता है आपको कि महिलाओं के लिए स्थिति और मुश्किल होती जा रही है? आपने सोशल मीडिया उत्पीड़न का सामना किया, कभी ऐसे क्षण आए जब लगा कि ये सब छोड़ देना चाहिए?
सोशल मीडिया पे बहुत क्या कहें, फालतू बातें ही कह सकते हैं, और फालतू बातें, भद्दी बातें जो सोशल मीडिया पे होती हैं, बट फ्रेंकली अब आप देखिए तो ये किसी भी महिला के लिए बहुत अनयूजुअल एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो रेगुलर डे टू डे बेसिस पे इस तरह की चीजों का सामना करती करती है। दूसरी बात मुझे लगता है कि देखिए जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से पब्लिक डोमेन के लिए ओपन कर ही रहे हैं एंड सो ये उस सब के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये सब उसके अगर समाज में ऐसी प्रॉब्लम्स ना होती, अगर समाज में महिलाओं का सम्मान होता, बराबरी होती, इक्वालिटी होती, हर व्यक्ति को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती हो जिसकी बैकग्राउंड से आता, तो शायद हम सबको सोशल वर्क और पॉलिटिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती।
आपको दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए जाना जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस दौरान क्या कुछ परेशानियों का, समस्याओं का भी सामना करना पड़ा?
चैलेंजेस तो काफी थे। चैलेंजेस इसलिए थे क्योंकि एक इंट्रेंच सिस्टम होता है जिससे चीजें करी जाती हैं, एक ब्यूरोक्रेसी होती है ऊपर से नीचे तक, और सबसे बड़ा एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है कि भाई सरकारी स्कूल थोड़ी अच्छे होते हैं, सरकारी स्कूल तो फेल ही होते हैं। सो आई वुड से ये इंट्रेंच्ड माइंडसेट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। टू चेंज द कल्चर ऑफ द स्कूल्स वाज द बिगेस्ट चैलेंज। टू मेक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिलीव कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो सकते हैं, उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, दिस वॉज द बिगेस्ट चैलेंज। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि ऐसा नहीं है कि हमारे स्कूल्स 100% अच्छे हो गए हैं या उनमें कोई कमियां नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कल्चर का जो चेंज है, आई थिंक दिस चेंज वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग अबाउट, और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा हमारा चेंज।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने शुक्रवार को कहा कि खबरों के अनुसार म्यांमार में सुरक्षा बलों ने देश भर में 60 स्कूलों व विश्वविद्यालय परिसरों पर कब्जा कर लिया है, जिससे संकट और भी ज्यादा गहरा गया है। यूनिसेफ, यूनेस्को और गैर सरकारी संगठन सेव द चिल्ड्रन ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा है कि कम से कम एक घटना ऐसी हुई है जिसमें सुरक्षा बलों ने कथित रूप से शैक्षिक संस्थानों के परिसर में दाखिल होते हुए अध्यापकों और शिक्षकों को पीटा है, जिसमें अनेक लोग घायल हुए हैं। यूएन एजेंसियों ने जोर देकर कहा है कि इन घटनाओं से मौजूदा संकट में और तीव्रता झलकती है और ये घटनाएं बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन दिखाती हैं। स्कूल किन्हीं भी परिस्थितियों में सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। एजेंसियों ने आगाह करते हुए कहा है कि स्कूलों पर सुरक्षा बलों द्वारा कब्जा किए जाने से देश में लगभग 1,20,00,000 बच्चों व युवाओं के लिए शिक्षा प्राप्ति का संकट और भी गंभीर हो जाएगा। ध्यान रहे कि कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में भारी दबाव और स्कूलों के लगातार बंद रहने के कारण स्कूली शिक्षा पहले से ही गंभीर रूप से प्रभावित है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने भी म्यांमार में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई पर गहरा क्षोभ प्रकट किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि विविधता दरअसल समृद्धि है, न कि कोई जोखिम। महासचिव ने बुधवार को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और पूर्वाग्रहों से निपटने में ज्यादा संसाधन निवेश किए जाने का आह्वान किया है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन प्रमुख ने इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा आयोजित एक स्मारक समारोह के लिए अपने संदेश में कहा कि ऐसी नीतियों को आगे बढ़ाते रहना होगा जिनमें मानवाधिकारों और विशिष्ट धार्मिक, सांस्कृतिक व मानव पहचान का सम्मान किया जाए। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने यूएन मानवाधिकार परिषद की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट का जिक्र किया। इसमें कहा गया है कि मुसलमानों पर शक करना, उनके साथ भेदभाव करना और उनके लिए खुले रूप में नफरत रखने के मामले महामारी के अनुपात तक बढ़ गए हैं। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह भी अन्य तरह के पीड़ादायक चलन की ही तरह हैं, जिनमें नस्लीय राष्ट्रवाद, नवनाज़ीवाद, किसी समुदाय को शर्मसार करने या उनके खिलाफ नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल बढ़ते देखा गया है। इस तरह के पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण चलन का निशाना मुसलमानों, यहूदियों, कुछ अल्पसंख्यक ईसाई समुदायों के साथ साथ अन्य समुदायों को भी बनाया गया है। यूएन प्रमुख ने जोर देकर कहा कि दुनिया पहले से कहीं ज्यादा बहुनस्लीय और बहुधार्मिक समुदायों की तरफ बढ़ रही है। इस पृष्ठभूमि में सामाजिक समरसता को मजबूत करने और पूर्वाग्रहों से निपटने में राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संसाधन निवेश करने की जरूरत है। भेदभाव, नस्लवाद और तमाम तरह के पूर्वाग्रहों का मुकाबला करना संयुक्त राष्ट्र की एक प्राथमिकता है। संयुक्त राष्ट्र ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों और उनके बाद लंदन, मैड्रिड और बाली में हुए हमलों के बाद अनेक मुस्लिम देशों और कुछ पश्चिमी देशों के बीच पैदा हुई कड़वाहट के मद्देनजर वर्ष 2005 में अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस गठित किया था। इस संगठन के मौजूदा उच्च प्रतिनिधि मिगेल एंगेल मोरातिनोस ने याद करते हुए बताया कि इस पहल का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच आपसी सम्मान को बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने धर्मों व आस्थाओं के रीति रिवाजों को मुक्त और सुरक्षित तरीके से निभाने के लिए खुला स्थान मुहैया कराकर आपसी सम्मान, अंतर आस्थाओं के बीच सद्भाव और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हासिल किए जा सकते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नवजात शिशुओं को उनकी माताओं से अलग किए जाने के खतरों की तरफ ध्यान दिलाते हुए आगाह किया है। एक नए अध्ययन में दिखाया गया है कि नवजात शिशुओं को उनकी माताओं के साथ त्वचा स्पर्श सुनिश्चित करने से 1,25,000 तक जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
UN स्वास्थ्य एजेंसी का कहना है कि बहुत से ऐसे मामले देखे गए हैं कि अगर किसी महिला को COVID-19 वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो गई है या संक्रमण होने का संदेह है तो भी नवजात शिशुओं को उनकी माताओं से अलग किया जा रहा है। ऐसा किए जाने से ऐसे शिशुओं के लिए मौत का उच्च जोखिम और जीवन भर की स्वास्थ्य जटिलताओं का जोखिम पैदा किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निर्धनतम देशों में सबसे ज्यादा जोखिम है, जहां समय से पहले जन्म होने और नवजात शिशुओं की मौत होने के सबसे ज्यादा मामले होते हैं। साथ ही जन्म के आरंभिक दिनों में अभिभावकों के साथ त्वचा स्पर्श यानी कंगारू मातृत्व और नवजात शिशु को जन्म के शुरुआती दिनों में केवल माँ का दूध ही पिलाने की सेवाओं में बाधा उत्पन्न होने के कारण जोखिम और भी बढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कंगारू मातृत्व देखभाल सुनिश्चित कराकर 1,25,000 नवजात शिशुओं की जान बचाई जा सकती है।
संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों ने कहा है कि दक्षिण एशिया में COVID-19 के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में उत्पन्न हुए गंभीर व्यवधान के परिणाम स्वरूप वर्ष 2020 के दौरान जच्चा बच्चा की अतिरिक्त 2,39,000 मौतें हुई हैं। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने बुधवार को जारी की है। रिपोर्ट बताती है कि COVID-19 से आए व्यवधान के परिणाम स्वरूप गंभीर व तात्कालिक कुपोषण का इलाज पाने वालों व बचपन में टीकाकरण किए जाने वाले बच्चों की संख्या में भी काफी कमी हुई है। दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक जॉर्ज लैरी अर्जई के अनुसार इन महत्वपूर्ण व आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण निर्धनतम व बहुत कमजोर हालात का सामना कर रहे परिवारों के स्वास्थ्य व पोषण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा, इन स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह बहाल किया जाना बेहद आवश्यक है ताकि उन बच्चों व माताओं को इनका लाभ मिल सके जिन्हें इनकी बेहद जरूरत है। साथ ही वो सब कुछ किया जाना सुनिश्चित करना होगा जिसके जरिए लोग इन सेवाओं का इस्तेमाल करने में सुरक्षित महसूस करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस महामारी के कारण दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी बेरोजगारी, निर्धनता और खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में भी गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात का जायजा लिया गया है। पाया गया है कि महामारी और उससे निपटने के लिए लागू किए गए उपायों के कारण इन देशों में लगभग 42 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर रह गए। रिपोर्ट के अनुसार ऐसी संभावना है कि लगभग 45 लाख लड़कियां अब कभी भी स्कूली शिक्षा में वापस नहीं लौट पाएंगी।
व्यक्तियों की उम्र पर आधारित नकारात्मक रूढ़िवादी मान्यताओं, पूर्वाग्रहों और धारणाओं से न केवल खराब स्वास्थ्य व सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ने की समस्या उभरती है बल्कि अर्थव्यवस्थाओं को भी अरबों डॉलर का नुकसान होता है। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों ने गुरुवार को एक नई रिपोर्ट जारी करके आयु आधारित भेदभाव और पूर्वाग्रह से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने की पुकार लगाई है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।